लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान रविवार 13 जुलाई को पोप लियो 14वें ने रोम के कस्तेल गंदोल्फो में विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा ख्रिस्तियों को याद दिलाया कि हम दूसरों की सेवा एवं देखभाल प्रेम से करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, न कि मृत्यु को धोखा देकर। पोप लियो 14वें ने रविवार 13 जुलाई को रोम के कस्तेल गंदोल्फो से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रतिले सोरेले बोना डोमेनिका।
प्रिय भाई एवं बहनों, शुभ रविवार।
Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
आज का सुसमाचार पाठ यीशु से पूछे गए एक सवाल से शुरू होता है। गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? संत पापा ने कहा,
Ciò che il cuore dell'uomo spera viene descritto come un bene da ereditare.
मानव हृदय जो आशा करता है उसे विरासत में प्राप्त होने वाली वस्तु के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे ना तो बलपूर्वक जीता जा सकता, ना ही नौकर के रूप में भीख मांगकर या अनुबंध के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। अनंत जीवन, जिसे सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, पिता से पुत्र तक मनुष्य को विरासत के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। यही कारण है कि यीशु हमारे सवाल का जवाब देते हैं कि ईश्वर का वरदान प्राप्त करने के लिए हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना होगा, जैसा कि संहिता में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
Corrispondiamo all'amore del Padre.
ऐसा करके हम पिता के प्रेम को प्रकट करते हैं। वास्तव में ईश्वर की इच्छा जीवन का वह नियम है जिससे ईश्वर सबसे पहले हम पर लागू करते हैं। अपने पुत्र यीशु में हमें अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। संत पापा ने कहा,
Fratelli sorelle, guardiamo a lui.
प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम उनकी ओर देखें। यीशु ईश्वर और मानवता के लिए सच्चे प्रेम को प्रकट करते हैं, ऐसा प्रेम जो देता और अधिकार नहीं रखता, प्रेम जो क्षमा करता और नहीं मांगता, ऐसा प्रेम जो सहायता करता और कभी नहीं त्यागता। ख्रिस्त में ईश्वर हर पुरुष एवं स्त्री के पड़ोसी बने, इसलिए हम में से हर कोई अपने रास्ते में मिलने वाले लोगों के पड़ोसी बन सकते हैं और बनना भी चाहिए। संसार के उद्धारकर्ता यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें भी सांत्वना एवं आशा प्रदान करने के लिए बुलाया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो निराश एवं हताश हैं। इसलिए अनंत जीवन पाने के लिए हमें मौत को धोखा नहीं बल्कि जीवन की सेवा करनी चाहिए, अर्थात हमारे पास जो समय है दूसरों को ध्यान देना।
Fratelli sorelle, guardiamo a lui. Gesù è la rivelazione del vero amore verso Dio e verso l'uomo.
यह सर्वोत्तम नियम है जो हर सामाजिक नियम से पहले आता है और उससे अर्थ प्रदान करता है। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम कुंवारी मरियम करुणा की माता से प्रार्थना करें कि वे हमें ईश्वर की इच्छा का स्वागत अपने हृदय में करने में मदद करें। जो हमेशा प्रेम एवं उद्धार की इच्छा है, ताकि हम हर दिन शांति स्थापित करने वाले बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिति का आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, sono contento di trovarmi qui in mezzo a voi a Castel Gandolfo.
मुझे यहाँ कस्टेल गंदोल्फो में आपके साथ आकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं उपस्थित नागरिक और सैन्य अधिकारियों का अभिवादन करता हूँ और आप सभी के गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद उन्होंने बार्सिलोना में नए धन्य घोषणा की याद कर कहा,
ieri a Barcellona è stato beatificato l'Icarione Mai.
कल बार्सिलोना में लाइकिरियन में जिनका पहले का नाम फ्रांसिस बेंजामिन था की धन्य घोषणा की गई, जो स्कूल्स के मेरिस्ट ब्रदर्स धम्म संघ के मठवासी थे, जिनकी 1909 में धम्म के नाम पर घृणा के कारण हत्या कर दी गई थी। संत पापा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने शैक्षिक और प्रेरितिक मिशन को समर्पण एवं साहस के साथ पूरा किया। शहीद की वीरतापूर्ण गवाही हम सभी के लिए, विशेषकर युवाओं की शिक्षा के लिए काम करने वालों की प्रेरणा बने। तत्पश्चात संत पापा ने पोलैंड से आए लिटर्जिकल अकादमी ग्रीष्मकालीन कोर्स के प्रतिभागियों का अभिवादन किया एवं उन पोलिश तीर्थयात्रियों की याद की जिन्होंने रविवार को चेस्तोकोवा के तीर्थस्थल की वार्षिक तीर्थयात्रा में भाग लिया। उसके बाद संत पापा ने बेरगामो धम्म प्रांत के जुबली तीर्थयात्रियों की भी याद की तथा उनका अभिवादन करते हुए कहा,
Saluto i pellegrini che assieme al vescovo sono giunti a Roma per attraversare la porta santa.
मैं उन तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ जो अपने धर्माध्यक्ष के साथ पौत्र द्वार में प्रवेश करने के लिए रोम आए हैं। मैं पेरू के चिकलायो स्थित संत अगस्टीन कॉलेज के तरानों के धन्य अगस्टीन प्रेरितिक समुदाय का भी अभिवादन करता हूँ जो जयंती मनाने के लिए रोम में उपस्थित हैं। उसके बाद संत पापा ने अलकाला डे हेनरिस धम्म प्रांत के प्रेरित संत पेट्रस पल्ली के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया जो पल्ली की स्थापना की 400वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने अगस्टीनियन धम्म बहनों को भी संबोधित किया। तत्पश्चात संत पापा ने फ्रांस से आए अकादमी म्यूजिकल डी लिसे के बाल गायक मंडली का अभिवादन किया और कहा,
Accogliamo con piacere il coro dei ragazzi dell'Accademia musicale di Lies della Francia.
आपकी उपस्थिति एवं गायन व संगीत के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। पोप ने कमांडर एवं अन्य अधिकारियों का भी अभिवादन किया और उन्हें अपने देश एवं नागरिक समाज की सेवा में अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात उन्होंने गौर किया कि गर्मियों के महीनों में बच्चों और युवाओं के लिए कई क्रियाकलाप होते हैं। उन्होंने उन शिक्षकों और संचालकों को धन्यवाद दिया जो इस सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने गिफोनी फिल्म महोत्सव की महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख किया जो दुनिया भर के युवाओं को एक साथ लाता है और इस वर्ष जिसकी विषय वस्तु है मानव बनना। तब संत पापा ने कहा, भाइयों एवं बहनों,
Non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa della violenza e della guerra si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno.
आइए हम शांति के लिए एवं उन सभी के लिए प्रार्थना करना ना भूलें जो हिंसा या युद्ध के कारण खुद को दुख एवं अभाव की स्थिति में पाते हैं। और अंत में संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti voi auguro una buona domenica.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार सुबह कास्टल गंडोल्फो के संत थॉमस पल्ली गिरजाघर में पवित्र यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। यह कास्टल गंडोल्फो शहर में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। हजारों लोग विल्ला बारबरेनी को प्रेरितिक पैलेस से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कतार में खड़े थे। रविवार सुबह जब संत पापा लियो को ले जा रहा वाहन कोर्सो देला रिपब्लिका से गुजरा तो जयकार के नारे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर तरफ से बालकनी, खिड़कियों और रंग बिरंगी इमारतों के कोने से लोगों ने संत पापा का अभिवादन किया। संत पापा ने अपनी बाहें फैलाकर सभी का अभिवादन करने की कोशिश की। मार्ग पर लगे लाउडस्पीकरों पर मिस्सा प्रवेश गीत बज रहा था और कभी कभी वाहन की गति धीमी कर दी जाती थी ताकि संत पापा बच्चों को आशीर्वाद दे सकें और आसपास मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन कर सकें। संत थॉमस पल्ली गिरजाघर में संत पापा ने पल्ली समुदाय के सभी पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों, नागर और सैन्य अधिकारियों और लोक धर्मियों का अभिवादन करते हुए कहा, आप लोगों के संग यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, भले समारी का दृष्टांत येसु ख्रिस्त के दृष्टांतों में से एक अति सुंदर और प्रभावित करने वाला दृष्टांत है। यह दृष्टांत हमें सदैव अपने जीवन के बारे में विचार करने की चुनौती देता है। यह हमारे सुषुप्त या भटकी हुई चेतना को विचलित करता और हमारे एक शालीन विश्वास को चेतावनी देता जो कानून के छिछले पालन से संतुष्ट है लेकिन ईश्वर के समान करुणा को अनुभव करने और उसके अनुरूप कार्य करने में असमर्थ है। संत पापा ने कहा, यह दृष्टांत करुणा के बारे में है। सुसमाचार की कहानी करुणा के बारे में कहती है जिसमें द्रवित होकर समारी कार्य करता है लेकिन इसके पहले हम घायल व्यक्ति के संबंध में उन लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सुनते हैं जो डाकुओं के हाथों में पड़ सड़क के किनारे पड़ा रहा। हम एक याजक, एक लेवी के बारे में सुनते हैं जो उसे देखते हैं लेकिन वहाँ से गुजर जाते हैं। वहीं समारी के बारे में सुसमाचार कहता है कि वह उसे देखता और करुणा से भर जाता है। संत पापा ने कहा कि यह दृष्टांत हमें ईश्वर की निगाहों से देखने के बारे में कहता है जिसे हम अपने जीवन में दूसरों को और परिस्थितियों को उनकी निगाहों से देखना सीखते हैं जो प्रेम और करुणा से भरा है। भला समारी सचमुच में हमारे लिए येसु एक निशानी दिव्य पुत्र को प्रकट करता है जिसे उन्होंने हमारी मानवता के इतिहास में भेजा क्योंकि वे विशेषकर मानवता को करुणा की निगाहों से देखते और उसके बीच से यूं ही गुजरना नहीं चाहते हैं। सुसमाचार का व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था जहां मानवता की मृत्यु गहराई में उतरी जो हमारे समय में भी हमें बुराई के अंधकार, दुख, गरीबी और मृत्यु की पहेली का सामना करने की मांग करती है फिर भी ईश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है। वे हमारे संग उसी राह में चलना और हमारे बीच आना चाहते हैं। येसु भले समारी हमारे घावों की चंगाई और उन पर प्रेम एवं करुणा का मरहम लगाने आते हैं। आइए आज हम फिर से उसकी आवाज सुने क्योंकि वह हम में से प्रत्येक से कहता है, जाओ और वैसा ही करो। उधर वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर मित्रता और सहयोग के बंधनों को मजबूत करने के लिए इस सप्ताह भारत की यात्रा पर हैं। वाटिकन सचिवालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यात्रा की घोषणा करते हुए एक पोस्ट के अनुसार वाटिकन अधिकारी रविवार 13 जुलाई को भारत पहुँचे और शनिवार 19 जुलाई तक वहीं रहेंगे। पोस्ट में लिखा है, इसका उद्देश्य परम धर्म पीठ और भारत गणराज्य के बीच मैत्री और सहयोग के बंधन को और मजबूत करना है। कैथोलिक कलीसिया इस हिंदू बहुल देश में सबसे बड़ी ख्रिस्तीय कलीसिया है। हालांकि कैथोलिक भारत की कुल जनसंख्या की अपेक्षा छोटा प्रतिशत है जो कुल जनसंख्या का 2% से भी कम है, फिर भी उनकी संख्या काफी अच्छी है जिसमें 2.3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं। देश में कैथोलिक कलीसिया लैटिन सीरो मालाबार और सीरो मालंकरा रीतियों में विभाजित है। एक तरफ यूक्रेन लगातार बमबारी और लंबे युद्ध के आघात को झेल रहा है, वहीं यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया देश और विदेश में अपने लोगों के साथ अपनी अधिक उपस्थिति बनाए रखे हुए है। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेनी कैथोलिकों के लिए फिलाडेल्फिया महाधर्म प्रांत के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष बोरिस गुडजियाक ने इस कठिन समय में कलीसिया के सामने आने वाली चुनौतियों और आशाओं पर प्रकाश डाला। वे कहते हैं, एक तरह से धर्माध्यक्ष ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में वे बहुत कुछ कर रहे हैं। वे लोगों के साथ रहते हैं और वे बताते हैं कि जब कोई समुदाय पीड़ा में होता है तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप पीड़ित होते हैं तो एकजुटता बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। महाधर्माध्यक्ष गुडजियाक विस्थापन से बुरी तरह प्रभावित एक राष्ट्र का वर्णन करते हैं। 2022 में बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से लगभग 1.4 करोड़ यूक्रेनी अपने घरों से भाग गए हैं। कुछ वापस लौट आए हैं, लेकिन कई आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं या विदेश में बस गए हैं। यहाँ लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा है। कलीसिया अपने पुरोहितों और धर्म संघियों के नेटवर्क के माध्यम से आश्रय, भोजन, वस्त्र, मनोवैज्ञानिक सहायता और चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। उधर आपातकालीन सेवाओं ने शनिवार को बताया कि गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर किए गए इजरायली हवाई हमले में 6 बच्चे समेत 10 फिलिस्तीनी मारे गए। स्थानीय चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि जल वितरण स्थल पर मिसाइल गिरने के बाद हताहतों को गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि हमला एक ड्रोन से किया गया था और कहा कि उस समय पीड़ित प्लास्टिक के कंटेनर पकड़े हुए थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।